यशाया अध्याय 55, यशाया अध्याय 55 पद 1। हो सब प्यासे लोगों, अब यशाया परमेश्वर के राज्य के युग में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर व्यापारिकता से दूर रहता है और उसे घृणा भी करता है। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है कि जो दूसरों से लाभ उठाते हैं, किसी के काम से लाभ उठाए। परमेश्वर ऐसे व्यापार तंत्र को ही समाप्त कर देगा। जब परमेश्वर ऐसा करेगा तब स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर बड़ा शोक और विलाप होगा। प्रकाशित वाक्य 18 में परमेश्वर कहता है कि वो किस प्रकार इस व्यापार के साम्राज्य का अंत करेगा जिसने क्रेडिट कार्ड ऋण के द्वारा मनुष्य को दास बना रखा है और मनुष्यों पर नाना प्रकार के वित्तीय बोझ डालकर परेशान करता है, मनुष्यों के दुर्भाग्य का लाभ उठाता है। इससे परमेश्वर क्रोध के साथ घृणा करता है। वो व्यापार को समाप्त कर देगा उस नए युग में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाएगा। व्यापार नाम की चीज न होगी, मनुष्य की लालसा को अवसर प्राप्त नहीं होगा कि वो लाचार व्यक्ति का शोषण करें या किसी सहभागी का या किसी दरिद्र का। ओ सब प्यासे लोगों, यशाया अध्याय 55 पद 1। पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर पृथ्वी से बहुतायत से उपज उत्पन्न कराएगा और प्रत्येक मनुष्य देखेगा। मनुष्य अपनी दाखलता तथा अपने अंजीर के पेड़ के नीचे बैठेगा और परस्पर शांति से रहेगा। उस समय लालच न होगा जिसके कारण हमारे इतिहास में इतने युद्ध हुए हैं। वे जो युद्धों से लाभ उठाते हैं, वे जिन्हें व्यापार में रुचि है, जो एक देश को दूसरे देश के विरुद्ध करके लाभ उठाते हैं, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। लालच की जड़ समाप्त हो जाएगी, सब कुछ निर्मोल हो जाएगा। ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, लो जो चाहो लो, कोई पैसा नहीं, कोई कीमत नहीं। यशाया अध्याय 55 पद 2। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? प्रभु ने कहा, यशाया अध्याय 55 पद 2, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? परमेश्वर हमारी जीवन शैली के बारे में कहता है कि हम किस प्रकार परिश्रम करते हैं, और वो भी उन बातों के लिए जिनसे हमें तृप्ति नहीं होती। आप ऐसा क्यों करते हैं? यशाया अध्याय 55 पद 2 से लेकर 4 तक। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और आज्ञा देगा और उसको धर्म तथा न्याय में स्थापित करेगा, और वो मनुष्यों के लिए गवाह होगा, वो अगवा होगा, वो सेनापति होगा। यशाया अध्याय 55 पद 5 से लेकर 7 तक। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इसराइल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभ्यमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आज परमेश्वर हमें कितने सुंदर वचन देता है, जब यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यशाया अध्याय 55 पद 8, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मैं इस सत्य की गवाही देता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि परमेश्वर क्यों ऐसे काम करता है। उसके विचार मेरे विचारों के से नहीं होते हैं, ना ही उसकी गति या विधि और मेरी गति एक सी होती है। मैं बहुत से काम अलग तरीकों से करूंगा, मैं अधिक बुद्धिमानी से करूंगा, मैं उन कामों को अलग तरीके से कर सकता हूं। परमेश्वर के विचारों में और मेरे विचारों में और उसकी विधि और मेरी विधि में क्या अंतर है? क्या ये कि परमेश्वर आरंभ से अंत को जानता है? यही है, यही कारण है कि जब वो कोई काम करता है तो दूसरी बार सोचता नहीं है कि वो काम ठीक है या नहीं। वो जानता है कि उसने जो काम किया है वो ठीक है। अब मैं जो काम करता हूं उसके लिए यही सोचता हूं कि वो ठीक हो, और कभी कभी वो ठीक होता भी है, परंतु अधिकांश समय वो ठीक नहीं होता है। परंतु जब मैंने काम करना आरंभ किया था तब वो निश्चय ही ठीक था। कहने का अर्थ ये है कि कई बार मैं सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे अच्छा तरीका है, उसके बाद मुझे बोध होता है कि वो ठीक नहीं है, उससे भी अच्छा एक तरीका था। इस कारण परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यशाया अध्याय 55 पद 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कैसा महान अंतर! फिर भी मनुष्य की मूर्खता देखिए, क्योंकि मैं कभी कभी परमेश्वर से अप्रसन्न हो जाता हूं कि वो मेरे अनुरूप काम क्यों नहीं करता है। क्या ये मूर्खता नहीं कि कोई परमेश्वर से अप्रसन्न हो कि उसने वैसा नहीं किया जैसे वो चाहता था, या कि जैसे वो करना नहीं चाहता था? यदि मैं इसी काम को अपने तरीके से करता तो मुझे किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। यदि मैं अपने तरीके से चलता तो यात्रा आरामदायक होती, कोई आंधी तूफान नहीं होता। परंतु ये परमेश्वर की गति नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि यदि मैं अपने तरीके से करता हूं तो मैं चरित्र के सामर्थ्य का विकास नहीं कर पाता। मैं बहुत दुर्बल, मोटा और बिगड़ा व्यक्ति बन जाता। मैं निराश ही रहता, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं पाता जो समस्याओं से ग्रस्त है, वो व्यक्ति जो किसी दुर्बलता का अनुभव करता है, मैं उसे सहन नहीं कर पाता। यही कारण है कि परमेश्वर मुझे मेरे तरीके से काम करने नहीं देता है। परमेश्वर मुझे गिरने देता है, वो मुझे ठोकर खाने देता है। परमेश्वर मुझे निर्बलता का अनुभव प्राप्त करने देता है। परमेश्वर मुझे परेशानियों, परीक्षाओं, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने देता है कि जब मेरा भाई आवश्यकता में हो तब मैं नम्रतापूर्वक आकर उसे उठा लूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं भी परीक्षा में पड़ जाता हूं। अतः परमेश्वर की विधियां सबसे अच्छी है। अब मेरे लिए इस बात पर बल देना कि परमेश्वर मेरे ही तरीके से काम करे एक मूर्खता है। मैं ऐसा करने से अपनी बुद्धि को परमेश्वर से बढ़ाकर जता रहा हूं। ये कैसी मूर्खता की बात है कि मैं परमेश्वर से कहूं, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू अब ऐसा करे। मैं इस बात को अस्तित्व में लाने की इच्छा रखता हूं, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करे। ये कैसी मूर्खता है। देखिए, मैं कैसे अपनी बुद्धि को, अपने तरीकों को, अपने विचारों को परमेश्वर से ऊपर उठाना चाह रहा हूं। मैं उनको सर्वपरि बना रहा हूं, जबकि परमेश्वर सर्वपरि है। कौन है जो सब कुछ जानता है और मुझसे अधिक अच्छा जानता है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन पर प्रकट होगा जो अभक्त और अधर्मी मनुष्य है, जिन्होंने परमेश्वर के सत्य को अधर्म में बांधा हुआ है। यदि आप परमेश्वर के सत्य को जानते हैं और फिर भी अपने तरीके को, अपने आप को और अपने विचारों को उससे उत्तम मानते हैं, तो ये परमेश्वर के सत्य को अधार्मिकता से ढांकना है। परमेश्वर के सत्य को बांधने का ये तरीका गलत है, क्योंकि आप इकरार करते हैं परमेश्वर सर्वोच्च है और वो सब कुछ जानता है। अब मैं कहूं, परमेश्वर मैं कहता हूं कि तू ये कर या ये मेरी आज्ञा है, ये तो परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना नहीं हुआ। ये तो अपने आप को सर्वोच्च और अपने मार्ग को सर्वोच्च बनाना हुआ। मैं परमेश्वर के सत्य को धार्मिकता में बांधकर रखता हूं और कहता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे अच्छा जानता हूं, मेरी गति तेरी गति से अच्छी है। यदि मैं केवल ये कहूं, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तो ये कितनी अच्छी बात होती। इससे परमेश्वर बहुत ज्यादा महिमा मिलती। ये कितनी बड़ी गवाही होती जब मैं कहता, प्रभु मैं अपनी इच्छा और अपनी गतियां तेरे अधीन कर देता हूं कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तो वही कर जो सबसे अच्छा है, तो वही कर जो तू सोचता है सबसे अच्छा है। यदि मेरी इच्छा के विपरीत काम हो रहा है, मुझे ना तो प्रश्न करना है, ना चुनौती देनी है और ना ही शिकायत करनी है। परमेश्वर ऐसा नीचतापूर्ण मौका ना दे। ओ, यदि मैं परमेश्वर के स्थान पर होता तो क्या मैं उनके मुंह में डांट नहीं लगा देता जो चीखते और शिकायत करते मेरे पास आते। जिस पल मैं ये सुनता हूं, ओ परमेश्वर चीखना, मैं चीखने पुकारने को सहन नहीं कर पाता हूं। मेरे बच्चों से बात कीजिए, मुझे तो चीखने वाला व्यक्ति कदापि पसंद नहीं है। मेरे बच्चे कितने भी शैतानी करें, परंतु वे चीखते पुकारते नहीं हैं। मैं परमेश्वर के उस स्वभाव को भी देखता हूं जो वो लगातार चीख पुकार, पेट का दर्द और अन्य विलाप के प्रति दर्शाता है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है कि मेरे विचारों से संगत हो, परंतु मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है, परंतु वो है, वो बहुत ही ऊंचा है, कोई नहीं जानता कितना। इसी प्रकार परमेश्वर के विचार मेरे विचारों से ऊंचे हैं और उसकी गतियां मेरी गतियों से ऊंची है। अतः सबसे बुद्धिमानी का काम जो मैं कर सकता हूं वो ये है कि मैं अपनी गतियों को परमेश्वर के अधीन कर दूं, और यही धर्मशास्त्र की शिक्षा भी है। भजन संहिता 37 पद 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। वो जो भी योजना बनाता है, जो भी सम्मति करता है, वो उसे पूरा करेगा। परंतु मुझे अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़नी है। यशाया अध्याय 55 पद 10 और 11, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर यहां अपने वचन का बड़ा ही सरल उदाहरण देता है, वर्षा और हिम किस प्रकार उतरते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास मानवीय खोज के द्वारा नहीं आया, जैसा कि कोई आपको समझाए, परंतु दूसरा तिमोथियस 3:16 हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा पत्रस 1:21 क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर का वचन हमारे पास स्वर्ग से आया है, और परमेश्वर के वचन के आने का उद्देश्य है कि वो यहां पृथ्वी पर अपना काम करे, ना कि स्वर्ग में। उसका प्रभाव, उसका फल और उसका परिणाम यहां पृथ्वी पर है। जिस प्रकार वर्षा पृथ्वी को सींचने के लिए आती है कि वो उसे जीवंत करे, आप एक सूखे मैदान को देखते हैं जहां केवल मिट्टी है और कुछ उगता नहीं, परंतु उसमें निष्क्रिय जीवन छिपा है। मिट्टी वर्षा पाते ही अपनी छिपी हुई सुंदरता और महिमा को प्रकट करती है। सारे बीज फूट निकलते हैं और वो उजाड़ स्थान रंग रंगीला दिखाई देने लगता है। सुंदर सुंदर फूलों के रंगों से पृथ्वी भर जाती है, क्योंकि बीज वर्षा के जल से जीवंत हो गए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, ज्यों ही परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, त्यों ही हमारा जीवन परिवर्तित होकर आत्मा से पूर्ण कर देता है। परमेश्वर का वचन वो नमी है जो हमारी आत्मा में आती है और उसे जीवन प्रदान करती है और हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण सामर्थ्य और महिमा को उभारता है। परमेश्वर के वचन के बिना मनुष्य मृतक है, निर्जीव है, बंजर है, वीरान है। परंतु ओह, जब परमेश्वर का वचन वर्षा की तरह मेरे जीवन को तृप्त कर देता है, तब उसके फल और परिणाम जो वो सींचता है कली खिल जाए, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दी जाए। मेरे जीवन में परमेश्वर के काम का प्रथम प्रभाव मुझ पर पड़ता है कि उसने मेरे लिए क्या किया है, और दूसरा, खाने वाले को रोटी की परमेश्वर मेरे द्वारा अन्यों की सहायता हेतु क्या करता है। इसी प्रकार मेरा वचन है जो मेरे पास खाली लौट कर नहीं आएगा। भजन संहिता 126 पद 6, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ते हैं जो बीज है। यीशु ने कहा है कि बीज वचन है, आप उसे लेकर अन्यों तक जाते हैं। निस्संदेह आप जब लौटेंगे तब आपके साथ फसल कटी हुई होगी। परमेश्वर का वचन खाली लौटकर नहीं आएगा। अब हमें परमेश्वर के वचन की सुरक्षा को छोड़कर उस पर आचरण करना है। उसे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो केवल यही आवश्यकता है कि आप केवल उसका अपने जीवन में उपयोग करें। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि वे और अच्छे ढंग से परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध बहस कर पाए, परंतु परिणाम ये होता है कि वे ही विश्वास कर बैठते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इंजीनियर था और बाइबल का अध्ययन इस उद्देश्य से करता था कि अपनी पत्नी के विश्वास की धज्जियां उड़ा दे, परंतु परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटा। इसके इस विलोम कार्य में ही परमेश्वर के वचन ने उसके हृदय में जड़ पकड़ ली और उसका मन परिवर्तन हो गया। वे विश्वास से बाहर आने की अपेक्षा विश्वास में ही प्रवेश कर गया। परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता है, यदि कोई उसे खुले मन से पढ़े तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके ही लौटेगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा कि आपको आशा, प्रोत्साहन, आनंद और जीवन प्रदान करे, तो ये सब आपको अवश्य ही प्राप्त होगा यदि आप वचन को पढ़ते हैं। वो खाली नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। अतः ये हमारे लिए कितना आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतरने दे, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में तर हो जाए और उसे अपने में समा जाने दे। इससे आपका जीवन महिमा और मनमोहकता से कैसा पल्लवित होगा। यशाया अध्याय 55 पद 12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। ओ वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से संतृप्त है, उसके साथ संपूर्ण प्रकृति सामंजस्य एवं सहभागिता का आनंद लेती है। जब आप परमेश्वर के साथ सामंजस्य बना लेते हैं तो एक ऐसी महिमा होती है कि आप स्वतः ही प्रकृति के सामंजस्य में आ जाते हैं और आप उन बातों को समझने लगते हैं जो पहले आपके लिए गुप्त थी। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप विश्वासी नहीं हो तो आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। यदि आपके मन में परमेश्वर वास नहीं कर रहा है तो आप जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। मैं आपसे सच कहता हूं कि आप यीशु की आंखों से उन बातों को देखेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है, उन फूलों को जिन्हें आप भूमि पर पैरों तले रौंद देते थे, अब आप फूलों के सौंदर्य से, फूलों की रचना से और फूलों के रंग से सम्मोहित हो जाएंगे। आपको नई नई बातें दिखाई देंगी, पहाड़ों से संगीत सुनाई देगा, पेड़ों से ताली बजने की आवाज सुनाई देगी और आप ओह बस परमेश्वर की सृष्टि के साथ सामंजस्य में अवस्थित होकर रह जाएंगे। यशाया अध्याय 55 पद 13। तब बट कटियों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। ये परमेश्वर के महिमामय पुनरुद्धार के दिन होगा। सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा में मेरी चिंता का विषय है कि परमेश्वर के वचन का परिणाम क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपना वचन कहा है वो उसे पूरा करके ही रहेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आप भी आशीषित होंगे क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। ये जानना एक संतावना का कारण है। मैं आपको वचन सुनाता हूं तो मुझे सदैव ये चिंता लगी रहती कि उसका क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि हम आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, इसलिए हम आपको परमेश्वर के वचन के सुपुर्द कर देते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा के काम करे, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में सत्य को प्रासंगिक बनाता है, और तब वो आपको अपने अनुग्रह के द्वारा अपने प्रेम की बहुतायत प्रदान करना आरंभ करता है। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको दृढ़ बनाए। जब आपका जीवन मसीह यीशु के ज्ञान और अनुभव की उस परिपक्वता में प्रवेश करे जिसकी परमेश्वर आपसे आशा रखता है, तब परमेश्वर का वचन आप में पवित्र आत्मा के द्वारा क्रियाशील किया जाता है कि आपका जीवन समृद्ध और परिपूर्ण हो जाए।